તારીખ 6/7/1998 શ્રી સમયસર શ્લોક 16 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 303
જીવ અધિકારની 16મી ગાથા ગાથાનું મથાળું છે હવે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ સાધક ભાવ છે એમ ગાથામાં કહે છે આત્માના સ્વરૂપ સાથે અવલંબન પામેલા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ જે ભાવો છે એ ત્રણ ગુણો મુખ્ય છે આત્મામાં સંસાર પરિભ્રમણમાં એ ત્રણેય ગુણોનું વિપરીત પરિણમન છે અને સંસારથી મુક્ત થવામાં એ ત્રણેય ગુણોનું સમ્યક પરિણમન છે એ ત્રણ ગુણો મુખ્યપણે કામ કરે છે જીવના પરિણમનમાં એની મુખ્ય ભૂમિકા છે બાકી અનંત ગુણોનું પરિણમન છે એ બહુભાગ ગુણો જે અનુજીવી ગુણો કહેવાય છે એ આ ત્રણ ગુણોને અનુસરે છે ત્રણ ગુણોના પરિણામને અનુસરે છે એ ત્રણમાં પણ જ્ઞાન મુખ્ય છે અનંતમાં આ ત્રણ મુખ્ય છે અને એ ત્રણમાં પણ જ્ઞાન પ્રધાન છે એ ત્રણે સ્વરૂપ સન્મુખ વર્તે છે સ્વરૂપને અવલંબીને વર્તે છે ત્યારે એને સાધક ભાવ કહે છે કેમ કે તે વખતે તે આત્માને સાધે છે આત્માની શુદ્ધિને સાધે છે આત્માની સુખ શાંતિને સાધે છે આત્માના સ્વભાવને સાધે છે એટલે એને સાધક ભાવ કહેવામાં આવે છે દંશણ નાણ ચરિતાણી સેવી દમવાણી સાહુણાણી ચમ તાણી પૂર્ણ જાણ તેવી અપાણમ ચેવ નિચ્છયો દો સાધુ પુરુષે જેને પોતાના આત્માને સાધવો હોય એવા આત્માએ દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર સદાય સેવા યોગ્ય છે અને આત્માનું શ્રદ્ધાંત સેવનનું સેવન કરવું આત્માનું જ્ઞાન સેવવું આત્માનું આચરણ એ ત્રણ પ્રકારે સેવન કરવું ત્રણેય ગુણ છે વિશેષ વાત એ છે કે વળી કરીને એમ કહે છે પુનઃ વિશેષ વાત એ છે કે એ ત્રણેયને નિશ્ચય નહીંથી એક આત્મા જ જાણો એ ત્રણેયને તમે મિત્ર તો એ પરિણામ છે એ ત્રણ તો આત્માના પરિણામ છે તો પણ નિશ્ચય નહીંથી ખરેખર તો એને તમે આત્મા જ જાણો એવું પરિણામનો ભેદ નહીં પાડતા એમ કે છે એમ કહેવા પાછળ આચાર્યદેવનો એક પારમાર્થિક હેતુ એ છે પારમાર્થિક એટલે આત્મકલ્યાણકારી એ હેતુ એવો છે કે જે જીવ આ સમયસારથી સમજાવવો છે જે જીવને એ જીવ પણ પરિણામ પ્રધાનતાથી જ આત્માને સમજે છે ચોરી કરનારને ચોર ગણે છે ભગવાનની પૂજા કરનારને પૂજારી ગણે છે જે પરિણામ કરે છે એવો જ આખો આત્મા સમજવામાં આવે છે આપણા ઘરે કોઈ ચોરી કરી જાય છે એટલે આપણે એને ચોર જ સમજીએ છીએ કે આ ચોર છે જેણે આપણા ઘરે ચોરી કરી ચોરીની એની પર્યાય છે અને આત્મા આમ છે એવું કઈ જુદું જ્ઞાનમાં નથી આવતું
કેવી રીતે આપણે સમજવા માટે આપણી સમજવાની ઢબ થઈ ગઈ છે, ટેવ થઈ ગઈ છે, કે જેવા પરિણામ એવો આત્મા કોઈ આપણા ઉપર ગુસ્સો કરે તો આપણે કે ભાઈ આ તો બહુ ક્રોધી માણસ છે, કોઈ આપણને છેતરે તો કે આ તો બહુ માયાવી માણસ છે. જેવો પરિણામ છે એવો જ આપણે આખો પદાર્થ પકડીએ છીએ. તો કે એવી જ રીતે જો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર આત્માના છે એ જ આત્મા છે તું પકડ, તને એ પકડ તો આવડે છે. આત્માના જે શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્ર છે એવો જ આત્મા છે. જેવું શુદ્ધ શ્રદ્ધાંત છે, જેવું શુદ્ધ જ્ઞાન છે, જેવું શુદ્ધ વિતરાગી આચરણ છે એવો જ આત્મા છે. માટે નિશ્ચયથી એ ત્રણેને તું એક આત્મા જાણ, તું ત્રણના ભેદ નહીં પાડતો, અથવા પરિણામ અને દ્રવ્યનો ભેદ પણ નહીં પાડતો એમ કહે છે. ટીકા: આ આત્મા જે ભાવથી સાધ્ય તથા સાધન થાય તે ભાવથી જ નિત્ય સેવા યોગ્ય છે. સાધન અને સાધ્ય બંનેને આત્મા જ ગણે છે, બંનેને આત્મા કહે છે. સાધન પણ આત્મા અને સાધ્ય પણ આત્મા. કેમ કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને સાધન કીધું તો કઈ આત્મા છે? કોને સાધે છે કે આત્માને સાધે છે? આત્મા આત્માને સાધે છે. જાઓ, હા, હિન્દીમાં લઈને કહે છે, ક્યા કહેતે હૈ કે આત્મા કો સાધને વાલે પરિણામ ભી આત્મા હૈ, ઓર આત્મા અપને સ્વરૂપ કો ઉસ પરિણામ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સે સાધતા હૈ વો ભી આત્મા હૈ. તો આત્મા આત્મા કો સાધતા હૈ, ક્યા ક્યા હુઆ આખિર માં કે આત્મા આત્મા કો સાધતા હૈ, વો ભી એક ભેદ હો ગયા હૈ. આત્મા મેં ઓર આત્મા મેં એક ભેદ હો ગયા. તો સમજાને કે લીએ ભેદ હૈ, અનુભવ મેં તો ભેદ નહીં હૈ. વો જો સાધક દશા હૈ, વો સાધક દશા કે અનુભવ મેં કુછ ભેદ નહીં હૈ. માં તો આત્મામય દશા હૈ. કૈસી દશા હૈ? આત્મામય, નિર્વિકલ્પ, નિર્ભેદ, શાંત 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 દશા હૈ. ભેદ મેં તો વિકલ્પ કે કારણ સે ભેદ હૈ, ઓર વો વિકલ્પ દુઃખદાયક હૈ, અશાંત હૈ. વિકલ્પ હૈ વો અશાંત હૈ. ટીકા મેં ક્યા કહા? આત્મા જો ભાવ સે સાધ્ય તથા આત્મા જો ભાવ સે સાધન હોતા હૈ, વહ ભાવ સે ઉસી ભાવ સે હી નિત્ય સેવન કરને યોગ્ય હૈ, કે જિસમે ઉસ ભાવ મે સાધ્ય ઓર સાધન દોનો આ જાય અભેદ રૂપ સે. એસા અપના ઇરાદા રખ કરકે, કોણ? આચાર્ય મહારાજ. આચાર્ય મહારાજ એસા અપના મન મેં ઇરાદા રખ કરકે પારમાર્થિક હેતુ સે. કિસ હેતુ સે બાત કર રહે હૈ? પારમાર્થિક હેતુ સે. દૂસરે કો કલ્યાણ હો જાય ઉસ વહી ઉનકા ઇરાદા હૈ કે દૂસરે જીવો કા કલ્યાણ ઉસમે હોવે. એસા ઇરાદા રખ કરકે દૂસરો કો અભી ઉપદેશ દે રહે ને, તો દૂસરો કો વ્યવહાર સે પ્રતિપાદન કરતે હૈ. યાને ભેદ જો ભેદ સે બાત કરતે હૈ વો તો દૂસરો કો વ્યવહાર સે પ્રતિપાદન કરતે હૈ કે સાધુ પુરુષ કો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સદા સેવન કરને યોગ્ય હૈ. બાકી તો આત્મા આત્મા મેં લીન હો જાય વહી બાત હૈ. લેકિન વ્યવહાર સે દૂસરે લોગ જો અભેદ અનુભવ મેં નહીં આયે, વો અભેદ અનુભવ કી ભાષા કો ભી નહીં બરાબર સમજતે હૈ, તો ઉનકો ભેદ ભેદ કી ભાષા મેં સમજાતે હૈ કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ऐसे जो परिणाम हैं उस ऐसे परिणाम से सदा ही आत्मा को आत्मा का सेवन करना योग्य है। परंतु परमार्थ से देखने में आए तो तीनों एक आत्मा ही है, वो तो उपदेश में दूसरों को समझाने के लिए भेद से समझाया, क्योंकि बिना भेद कोई समझता नहीं है। इसलिए परमार्थ से देखे, अनुभव की पद्धति से देखे, जिस परिणाम में आत्मकल्याण है उसी दृष्टिकोण से देखे तो तीनों एक आत्मा ही है, क्योंकि तीनों अन्य वस्तु नहीं है। आत्मा के श्रद्धा ज्ञान चारित्र आत्मा में लीन होने से होता है, तल्लीन होने से होता है, आत्मामय होने से होता है, इसलिए कोई दूसरी चीज है ही नहीं, उसको आत्मा ही जानो। और आप ऐसे ही जान रहे हो, चोरी करने वाले को चोरी जान रहे हो, क्रोध करने वाले को क्रोधी जान रहे हो, पूजा करने वाले को पुजारी जानते हो। तो ऐसे आत्मा को जो सत्ता है उसको आत्मा, आत्मामय जो है, आत्मा रूप है, आत्म सदृश परिणाम है, उसको आत्मा ही जानो, क्योंकि वो आत्मा से अभिन्न है, आत्मा से अपने को भिन्न भाव से देखते नहीं है। जो परिणाम आत्मस्वरूप को अभिन्न रूप से और अभिन्न भाव से अभिन्न रह करके अनुभव करता है उसको आप आत्मा ही जानो ना, उसको आत्मा जानो, ठीक है, वही आत्मा है। आत्मा के ही पर्याय है, आत्मा के ही पर्याय है, और आत्मामय है, आत्मा में लीन है, आत्म सदृश है, इसलिए उसको ही आत्मा जानो। कृपाल देव के वचन में वो बात है कि हम तो प्रकट आत्मरूप हुए ही हैं, हम प्रकट आत्मरूप हो गए हैं, फिर कहते हैं कि आत्मा समस्वभावी है, ऐसा अनुभव करके कहते हैं, प्रकट होकर के कहते हैं, प्रकट आत्मरूप बन होकर के ही बताते हैं आत्मा की बात, भले भेद से बताते हैं लेकिन आत्मा होकर बताते हैं, ऐसा भाग नहीं क्या पत्र चला 438। आत्मा के ही पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, आत्मा रूप पर्याय है, आत्मा सदृश है। जैसे कोई एक दृष्टांत देते हैं, देवदत्त नाम का पुरुष में पुरुष के ज्ञान श्रद्धान और आचरण देवदत्त के स्वभाव को उल्लंघन नहीं करते होने से, वे देवदत्त ही अन्य वस्तु नहीं है, कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उनका जैसा पर्याय है वही देवदत्त है। देवदत्त कौन, जैसे जैसे इसकी अवस्था वही देवदत्त है। तो एक दृष्टांत लिया, अपने एक परिचित बात ले लो ना, कोई एक व्यक्ति परिचित व्यक्ति है, इसका नाम लिया जाता है, तो उसकी जैसे पर्याय वैसे ही वो व्यक्ति है, और क्या है अपने ज्ञान में, क्या है अपने घर के एक मेंबर को ले लो, घर का एक मेंबर को, तो उसकी पर्याय वही वो व्यक्ति है, और क्या है अपने ज्ञान में, इसकी जिसकी जैसी पर्याय है वही व्यक्ति अपने ज्ञान में है, है क्या नहीं, प्रैक्टिकली देख लो। बस वो देवदत्त नाम का ऐसे दृष्टांत दिया, वैसे आत्मा का श्रद्धा ज्ञान चारित्र को जो साधता है वही आत्मा है, वैसा ही आत्मा है, बस बात खत्म, ऐसे समझो। इसलिए अमृत चंद्र आचार्य ने प्रवचन सार में भावलिंगी संत जो है, जो शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र से मुख्य रूप से परिणमित है, उनको मोक्ष तत्व कहा है, मोक्ष तत्व मैंने वो तो सिद्धालय में जो भगवान निर्वाण को प्राप्त करके सिद्धालय में विराजे हैं वो ही मोक्ष तत्व है, तो कह नहीं वो तो है ही। ये जो साधु है निग्रंथ मुनिराज है वो ही मोक्ष तत्व है हमारे ज्ञान में, खुद ही निग्रंथ मुनिराज है लेकिन उन वो निग्रंथ मुनिराज को मोक्ष तत्व कहते हैं और गुरुदेव उसको चलते फिरते सिद्ध कहते हैं, चलते फिरते सिद्ध क्योंकि उनके परिणाम आत्मा रूप हो गए हैं, तो ऐसा ही कहना चाहिए, वही ठीक है, वही बराबर है। उनको भी परमात्मा ही कहते हैं, धर्मात्मा को परमात्मा ही कहते हैं और मोक्ष को वही उचित है। सत्पुरुष मां परमेश्वर बुद्धि ते मुमुक्षु नो परम धर्म छे, मुमुक्षु शब्द छे अध्यार छे त्या, सत्पुरुष मां परमेश्वर बुद्धि तेने परम धर्म कयो छे, कयो धर्म कयो एने परम धर्म कयो छे। 254 मां मुमुक्षु तारुण क्रम मां वात आवे छे, पद्म ब्रह्मदारी एम कयो कि जो हमें साधक मां ने परमात्मा मां भेद पाड़िए तो ये हमारी बहु मोटी भूल छे, ये हमारी बहु मोटी भूल छे। तो बधा ज्ञानियों नो अभिप्राय तो पड़ुदेव नो अभिप्राय लियो, अमृतचंद्राचार्य नो अभिप्राय लियो, पद्म प्रबलधारी देव नो अभिप्राय लियो, बधा एक ज वात कहे छे અમારી બહુ મોટી ભૂલ છે એમને, કહું ત્યાં શબ્દ તો બહુ કડક વાપરો છે, કઈ યાદ નથી મને, જૈસે કોઈ દેવદત્ત નામ કે પુરુષ કે જ્ઞાન શ્રદ્ધાન ઓર આચરણ દેવદત્ત કે સ્વભાવ કો ઉલ્લંઘન નહીં કરતે હોને સે વે દેવદત્ત હી હૈ અન્ય વસ્તુ नहीं है, वही देवदत्त है और कोई चीज नहीं है। वैसे आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और आचरण आत्मा के स्वभाव को उल्लंघन नहीं करते होने से वे आत्मा ही है अन्य वस्तु नहीं है, वो तो आत्मा के स्वभाव स्वरूप है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो सम्यक हो गए वो तो आत्मा के स्वभाव स्वरूप है, इसलिए वो आत्मा ही है। पर्याय से ही पर्याय द्वारा ही पर्याय से ही द्रव्य को समझा जाता है और अंगीकार किया जाता है, दूसरा कोई इलाज है ही नहीं, वो एक ही सही पद्धति है, वो पारमार्थिक पद्धति है, वही बताई इस गाथा में। इसलिए ऐसा स्वयमेव सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है, एक आत्मा ही आत्मा को सेवन करने योग्य है, आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा से ही सेवन करने योग्य है। मैंने दूसरा कोई साधन की अपेक्षा नहीं है, दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं है इसमें। ऐसा कह करके परावलंबन और परतंत्रता का निषेध किया है और दूसरे पदार्थ के प्रति परिणाम भी खींचाने का निषेध कर दिया है कि तुम ही आत्मा हो, तुम अपना श्रद्धा ज्ञान चारित्र से अपने आप को सेवन करो, आत्मा द्वारा आत्मा का सेवन करो, बस बात खत्म हो गई, कोई दूसरे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जीव आत्म कल्याण करने में भी जीव आत्मकल्याण करने में भी विपरीतता ग्रहण करता है कि हमको ऐसी परिस्थिति होवे तो हम आत्मकल्याण करें, ऐसा साधन मिले तो आत्मकल्याण करें। तो साधन की परतंत्रता में आत्मकल्याण नहीं कर पाता। तो यहां कहते कि नहीं, तुम अपना श्रद्धा ज्ञान चारित्र से अपना साध्य आत्मा को सिद्ध करो, दूसरा साधन की उसमें कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम कहीं भी हो, नरक में हो, स्वर्ग में हो, मनुष्य गति में हो, कहीं भी तुम हो, अपना साधन कर सकते हो। तुम ट्रेन में हो, सफर में हो, प्लेन में हो, बस में हो, चलते हो, बैठे हो, सोए हुए हो, किसी भी हालत में हो, अपना साधन कर सकते हो। दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब क्या कि हर हालत में तुम अपना काम कर सकते हो, कोई परतंत्रता तुमको नहीं है, स्वतंत्र हो तुम अपने काम करने के लिए। ऐसा साधन मिले तो मैं ये काम करूं, ऐसा साधन मिले तो मैं काम करूं, वो बात ठीक नहीं है, वो बात ठीक नहीं है। कुसुम का रंग तब लग जाता है कि हम कुसुम की रुचि करते हैं, तब तब लगता है, और वो रुचि हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, हमको हमारी इच्छा से करते हैं। कुसंग जब हमारी इच्छा से करते हैं तब रंग चढ़ता है। देखो ज्ञानियों के पास कितने अज्ञानी आते हैं, क्यों ज्ञानी को रंग नहीं चढ़ता? क्यों? क्यों उनको अज्ञानी के पास जाने की रुचि नहीं है, इसलिए नहीं चढ़ता। और अज्ञानी को ज्ञानी का रंग चढ़ता है, क्यों चढ़ता है? कि उनको जाने की रुचि है तो चढ़ता है। अगर रुचि बिना आता है तो उसको नहीं चढ़ता है, रुचि वाला आता है तो उसको चढ़ता है। सिद्धांत तो एक ही हो गया ना, ये गुरु की आवश्यकता लगे और गुरु का संग करें तो गुरु का संग ऐसा करना कि गुरु में और अपने में भेद रहे नहीं, अभेद बुद्धि हो जाए। क्या फिर भेद नहीं रखना। गुरु का संग करने का उपदेश है शास्त्र में अवश्य, लेकिन वो वहां भी ऐसा कहा है कि तुम अभिन्न भाव से सेवन करो, वो कल्याण भूषण मोटो निश्चय से है। सत्पुरुष में अभिन्न बुद्धि थवी ते कल्याण नो मोटो निश्चय से। एनो अर्थ शू खबर? इसका मतलब क्या है कि जिस आत्मा को सत्पुरुष में अभिन्न भाव हो जाते हैं, निश्चय से उसका कल्याण हो ही जाता है। वो कल्याण का बड़ा निश्चय है, इसका मतलब क्या कि उसका तो कल्याण हो ही जाता है, उसमें कोई संदेह का अवकाश नहीं है, शंका का अवकाश नहीं है। बात है अभिन्न भाव होने की। तो संघ की बात ऐसी ऐसी कर दी है आखिर में, भिन्न भाव रखने की बात नहीं। जिसने किया उसका कल्याण हो गया, सिद्धांत है वो तो, जिसने ऐसा किया उसका कल्याण हो गया। क्यों? कि उसका और जगह से ममत्व अपनत्व छूट जाएगा, तो वही तो संसार का कारण था। अन्य पदार्थ में अपनापन करना वही तो संसार का परिभ्रमण का कारण है, 537 में वही कहा, और अभी वो भी कहेंगे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 गाथा में वही प्रकरण चलेगा, अभी वही प्रकरण चलेगा, बम्बई में अभी चला, 1922 तक चला, 25 तक वही प्रकरण चलेगा। तो क्या है कि पहले तो अपने संयोग में अभिन्न बुद्धि थी, अपने परिवार में अभिन्न बुद्धि थी, माँ कभी ऐसे बोलते हैं लड़के को, मैंने तुमको 4 रोटी खिलाया है, हमने तुमको बड़ा किया, ऐसा कोई होता नहीं है, अभिन्न भाव में कुछ होता ही नहीं है, बस कोई ऐसा ऐसा नहीं देखती है माँ। जब बच्चे को पालन पोषण करती है, दूध पिलाती है, तो जिस दिन बच्चा को जन्म दिया वो हमको बचपन में वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेगा या नहीं करेगा शंका रखती है क्या? बाद में दूध पिलाती है क्या? हैं, बहुत प्रेम से, मातृ प्रेम उसका जो इतना हो जाता है कि उसको स्तन में दूध आने लगता है, इतना उसको प्रेम आ जाता है। तो ये कुदरती व्यवस्था है, फीलिंग का बॉडी के साथ जो एडजस्टमेंट है वही प्रकार का। तो उसको वो शंका नहीं होती कि मुझे मेरा पालन पोषण करेगा नहीं, अरे करेगा कि नहीं करेगा, मेरे को तो अभी प्रेम है। वो निष्काम बुद्धि से उसको पालन पोषण करती है कि नहीं करती, ऐसा निष्काम भाव, ऐसी अभिन्न बुद्धि अगर सत्पुरुष में की जाती है, श्री गुरु में की जाती है तो कल्याण हो जाता है, क्योंकि उसकी अभिन्न बुद्धि वहां से उड़ गई। संसार के पदार्थ सचेत अचेत सचेत अचेत मिश्र, उसमें अभिन्न बुद्धि होती है अज्ञान के कारण से, वो अभिन्न बुद्धि उसकी छूट जाती है, तो उसका दर्शन मोह है वो गल जाता है, और वो प्रथम संकेत को प्राप्त करता है, बाद में दूसरे संकेत को प्राप्त करता है, बाद में तीसरे संकेत को प्राप्त करता है, बस हो गया उसका तो काम, और वही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और प्रारंभ में अभिन्न बुद्धि छुड़ाने के लिए एकमात्र वही उपाय है, हाँ, क्योंकि सिद्धि आत्मा में तो बुद्धि अभिन्न होती नहीं, स्वरूप में तो उसको ट्रांसफर करते हैं, परद्रव्य में ही परद्रव्य में ट्रांसफर कर देते हैं, बस उसका काम हो गया, वही व्यवस्था है। वो 194 पत्र में तो वही बात किया कृपालु जी ने, सर्वशास्त्र का शास्त्र बोध लक्ष्य देखने में आए तो वही है, और हमको भी ज्ञान प्राप्ति ऐसे ही हुई थी, हमको भी ज्ञान प्राप्ति ऐसे ही हुई थी, ऐसा करके अपना अनुभव भी किया है। इसलिए स्वयमेव सिद्ध होता है कि आत्मा ही सेवन करने योग्य है। तो क्या है कि एक दफे तो जो पर पदार्थ संसार के पर पदार्थ आत्मा हो गया था, वो स्थान गुरु का हो जाता है, तो गुरु में आत्मापन हो जाता है, तो वही मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा अलग नहीं, वही मेरा आत्मा है, बस बात खत्म, फिर अपने आत्मा में वो आ जाता है। भावार्थ दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा के ही पर्याय है, कोई जुदी वस्तु नहीं है, आत्मा के ही पर्याय है। अतः साधु पुरुषों को एक आत्मा का ही सेवन करना यही निश्चय है, निश्चय वही है, करने योग्य वही है कि एक अपना स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान और आचरण करना वही आत्मा का सेवन है। और व्यवहार से अन्य को भी यही उपदेश करना, अपने को भी स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान से आ स्वरूप का सेवन करना, और दूसरों को भी यही उपदेश करना कि आप भी अपने सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण से स्वरूप का सेवन करो, वही करने योग्य है। अब यही अर्थ का कलश रूप श्लोक कहते हैं, श्लोक ने कलश कहते हैं, प्लस इसलिए कहते हैं कि शास्त्र भी एक मंदिर है और मंदिर पे जैसे कलश लगाने से उसकी शोभा होती है, वैसे ऐसे श्लोक से शास्त्र की शोभा है, श्लोक से शास्त्र की शोभा है। तो बहुत जिसको उसका छंद आता है बहुत अच्छी तरह से वो उनको रस में आकर के गाते हैं, रस चढ़ता है उसमें। दर्शन ज्ञान चारित्र ही त्रित्वाद एकत्वतः स्वयं मेचको अपि अमेचकश्चापि समम आत्मा प्रमाणतः। प्रमाण दृष्टि से देखने में आए तो ये आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्था रूप भी है और उसी वक्त एक ही साथ एक अवस्था रूप भी है। अनेक अवस्था रूप है उसको मेचक कहते हैं और एक अवस्था एक रूप अवस्था को ध्रुव को अमेचक कहते हैं, क्योंकि उसे दर्शन ज्ञान चारित्र से तो तीन पना है, उसे दर्शन ज्ञान चारित्र से तो तीन पना है और अपने आप से एक पना है। मूल मार्ग मापने गयो नान दर्शन चारित्र नी एक तारे है। और उमा स्वामी महाराज ने पहला सूत्र भी वही किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हो। संस्कृत में एक वचन ने बहुवचन में फर्क पड़े से, दर्शन ज्ञान चारित्राणी तीन बहुवन होने पर भी मोक्ष मार्ग हा ऐसा नहीं कहा, तो तीन मार्ग हो जाते हैं और मोक्ष मार्ग मैंने एक मोक्ष मार्ग है, एक शब्द अध्यार है, मोक्ष मार्ग ऐसा कहा तो एक शब्द अध्यार है और मोक्ष मार्ग हा ऐसा कितना कहा तो तीन मार्ग हो गया, बहुवचन हो गया व्याकरण के अनुसार। तो क्या कहते हैं कि उसमें एक पणा है। प्रमाण दृष्टि से देखें तो इस आत्मा में एक ही साथ अनेक अवस्था रूप भी पना भी है और एक अवस्था रूप पना भी है, दोनों है, ध्रुव भी है और परिणमन में श्रद्धा ज्ञान चारित्र भी है। और अपने आप से देखे तो एक मेक है, एक पणा ही है, दो पणा नहीं है। जो आत्मा स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप परिणमन गया वो एक आत्मा ही हो गया, वो एक आत्मा ही हो गया। और क्यों? कि वो अपने आप को ऐसा ही अनुभव करता है। हम परमात्मा रूप हुए हैं वो कैसे कहा? बस क्योंकि परमात्मा स्वरूप का अवलंबन लिया, हो गए परमात्मा। परिणमन भी ऐसा करना और दूसरों को उपदेश भी ऐसा ही करना, कैसी बात किया है? परिणमन भी करना और ऐसे ही परिणमन करने का उपदेश करना। श्लोक का भावार्थ है कि प्रमाण दृष्टि में त्रिकाल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखने में आती है। प्रमाण दृष्टि में तो ये वस्तु है वो द्रव्य पर्याय रूप है, तीनों काल वो एक रूप ही देखने में आती है। प्रमाण में भेद नहीं पड़ता, प्रमाण में भेद नहीं पड़ता, वो पर्याय समेत वस्तु वो प्रमाण का विषय है। श्रद्धा का विषय अलग है, प्रमाण का विषय अलग है। लेकिन इसलिए प्रमाण उपकारी नहीं है ऐसी बात नहीं है, प्रमाण भी उपकारी है ऐसा कहते हैं। प्रमाण दृष्टि में त्रिकाल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखने में आती है, अतः आत्मा भी एक ही साथ एक अनेक स्वरूप देखना जैसा है वैसा एक अनेक स्वरूप है एक साथ, और देखना भी ऐसा ही ऐसा कहते हैं। और हम प्रैक्टिकली ऐसा ही करते हैं, हम प्रैक्टिकली ऐसा ही करते हैं कि एक ही साथ अवस्था रूप भी देखते हैं और अवस्था के साथ जुड़ा हुआ अपूराय भी देखते हैं, एक ही साथ वो काम करते हैं। मालूम है कि आपने जो बोला वो भाव बदल जाएगा, वो भाव रहने वाला नहीं है, फिर भी आप तो वही के वही रहने वाले हैं, आप नहीं बदलने वाले हैं। इसलिए एक ही साथ एक रूप और अनेक रूप देखना वही प्रैक्टिकल साइड है। जैसे कोई लड़का पहले छोटा था तब भी उसके माँ बाप उसको अपने पुत्र की दृष्टि से देखता है, फिर बड़ा हुआ तब भी उसको पुत्र के रूप से दृष्टि से देखते हैं। अवस्था बदली कि नहीं बदली उसको ही बताएंगे कि बेटा तुम छोटा था तब तुम ऐसा था, तुम ऐसे करते था, तुम ऐसा बोलता था, अब तुम बड़ा हो गया तो उसको अनेक अवस्था रूप भी देखता है और उसको एक अवस्था भी एक साथ देखते हैं कि नहीं देखते हैं। उसमें लड़का को बदल दी अवस्था बदली तो लड़का बदल गया क्या? कोई प्रैक्टिकल साइड प्रमाण दृष्टि ऐसे उपकारी है, प्रमाण दे अरे पर्याय दृष्टि भी उपकारी है, दृष्टि भी उपकारी है, क्योंकि वो सब नई का विषय है और हर नई आत्मा को आत्मा में ले जाता है, प्रत्येक नई आत्मा को आत्मा में ले जाए, आत्मा को आत्मा में ले जाना उसी का नाम ही नय है, नय टू लीड ले जाना। तो कोई भी नहीं कोई कहते हैं कोई निश्चय नहीं हमको आत्मा में ले जाता है, पर्याय व्यवहार नहीं हमको आत्मा में नहीं ले जाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पर्याय नहीं भी तुमको आत्मा में ले जाता है, ज्ञानी को तो ले जाता है, ज्ञानी को कभी एक नहीं रहता है ऐसी बात नहीं है, दूसरा नहीं भी आता है, तीसरा नहीं भी, अनेक नहीं से परिणाम होता है, सब नहीं से आत्मा में ले जाना है। इसी को कहते हैं ज्ञान कला, उसको कहते हैं ज्ञान कला। ज्ञान की कला ऐसी है कि किसी भी नई से वस्तु का विचार करो तो आत्मा में ले जाएगा, किसी भी नई से देखो तो। अमृतचंद्राचार्य ने प्रवचन सार के परिशिष्ट में 47 नई लिखे हैं, उसमें 46वां जो नई है 46 लिखे 47 वो अशुद्ध नहीं है। कैसा है? अशुद्ध नहीं। अशुद्ध नहीं क्या करता है कि आत्मा के परिणाम में जितनी अशुद्धि बाकी रही उसको जानता है, उसको जानने का प्रयोजन है। वो अशुद्धि जान करके कैसे आत्मा में ले जाता है? वो तो नहीं है। ज्ञानी को होता है कि नहीं होता है? तो होता है। एक नहीं से वो अपनी अशुद्धि को कमी को भी जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर नहीं जाने तो मिटाएंगे कैसे, सवाल ही पैदा नहीं होता, तो जानते हैं। जिस ज्ञान से जानते हैं उस ज्ञान के अंश को अशुद्ध नहीं कहने में आता है। बात तो ठीक है वहां तक, लेकिन वो आत्मा में कैसे ले जाता है, वो अशुद्ध नहीं आत्मा में कैसे ले जाता है कि जिससे शुद्धि होती है? तो कि जिस अशुद्ध अंश को वो जानते हैं, पर्याय में जो अंश अशुद्ध है उसको जानते हैं, उसी में उसमें निश्चय जो वस्तु शुद्ध है उसके साथ उसकी तुलना कर लेते हैं और तुलना करके उसका निषेध करते हैं, अशुद्धि का निषेध कर देते हैं। मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूँ, पर्याय में जो ये शुद्धता है वो मिटाने लायक है, इस तरह से ज्ञान करते हैं कि देखो शुद्ध स्वरूप के मुख्यता रख करके, ज्ञान में रख करके फिर अशुद्धि का ज्ञान होता है। अकेला अशुद्धि का ज्ञान अज्ञानी को होता है, वैसा अरे रे मेरे ऐसा भाव हो गया, मेरे ऐसा भाव हो गया, मेरे मैं ऐसा ही हो गया, मैं ऐसा ही हो गया, वो बात नहीं है। वहाँ तो स्वरूप के ज्ञान पूर्वक अशुद्धि का ज्ञान होता है, इसलिए वो अशुद्धि का ज्ञान भी आत्मा में ही ले जाता है, उसको निषेध करके, निषेधाए बिना नहीं रहता। ऐसे प्रमाण दृष्टि भी उपकारी है, और अतः आत्मा को भी एक ही साथ एक अनेक रूप देखना, और आत्मा को इस प्रकार से देखना वो प्रमाण दृष्टि से सही है, सम्यक प्रमाण है वो। और जो वो ऐसा नहीं देखते हैं उनको प्रमाण दृष्टि प्रकट नहीं होती, और प्रमाण दृष्टि प्रकट नहीं होती है तो उनको अनुभव नहीं होता है। ऐसी बात है, वास्तव में अनुभव तो प्रमाण दृष्टि में ही होता है अज्ञानी को, ज्ञानी बनने में। और इसलिए यही पद्धति से पूरी समय सार की शैली चली है, यही पद्धति से ये शैली चली है, समझे। शुरू से ही वो गाथा चली है, उस प्रकार से दूसरी गाथा लिखी है, उसी प्रकार से अंत में परिशिष्ट में जो भी 47 ने लिखे हैं वो उसी ढंग से लिखे हैं। समय सार में 47 शक्तियाँ उसी प्रकार से लिखी है। शक्तियाँ तो वस्तु की द्रव्यार्थिक निका विषय है, लेकिन पर्याय प्रधानता से या डेफिनेशन किया है सबका, ऐसी बात है। और उसमें भी पारमार्थिक हेतु वही है कि उसी पद्धति से हम व्यवहार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ परिणमन करते हैं और हमारा कारोबार चलाते हैं, संसार चलाते हैं। अब ये पद्धति को यहाँ लगा दो आत्मा में, और उसी पद्धति से मोक्ष का साधन करो, आत्मा का साधन करो, बात खत्म। ऐसी बात है। इतना कह करके अब नई विविक्षा कहते हैं, वो 16 करस हुआ, 17 करस में कहेंगे नई विविक्षा क्या चीज है। यहाँ तक रखें।